नमस्कार दोस्तों, अब आगे सुनिए। मुझे ही एक आइडिया आया, पर वो वक्त आइडिया पर काम करने का नहीं था। सामान लेकर कमरे में चेक इन करने का था। सबके कमरे पहले से डिसाइडेड थे और कमरा साझा करने वाले ऑफिसर्स भी। कमरा मिलने के बाद धीरज ने पूछा, चेक इन हो गया? कौन सा कमरा है तुम्हारा, किसके साथ हो? जी 206, रोशनी के साथ है मेरा नाम। रोशनी दीपक और धीरज के साथ पहले ही से शराब की महफिलों में जाती थी। दीपक और धीरज एक ही कमरे में थे। धीरज ने बताया वो 403 में है और कुछ ज़रूरत हो तो आ जाना, यहाँ फ़ोन के सिग्नल थोड़े ख़राब हैं तो सबके साथ रहना। मैंने कहा जी ठीक है। क्योंकि वो एक रिजॉर्ट था तो कई एकड़ की ज़मीन में फैला था। वहाँ कॉटेजेस थे और सारे कमरे अलग अलग विंग में बटे थे, विंग 1, 2, 3, 4। मेरा कमरा विंग 2 में थोड़ी सी ऊंचाई पर था, जहाँ से नीचे का बगीचा साफ दिखता था। रेस्टोरेंट में स्विमिंग पूल, कॉन्फ्रेंस सब थे। मैं घूमते घूमते अपने कमरे में पहुँची। कमरा खोला, बैग रखते बाथरूम दौड़ी। सुबह से सुसू नहीं किया था। धीरज और दीपक ने हालत ख़राब कर रखी थी जूत की। जब तक मैं बाहर आई, रोशनी आ गई थी। उसने आते ही कहा, तैयार हो जाओ, कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया 1 घंटे में। उस वक्त 3 बज रहे थे। मेरे बाथरूम से निकलते ही रोशनी चली गई, जैसे वो मेरे निकलने का ही वेट कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। धीरज थे। मिल गया कमरा? काफ़ी अच्छा है। चलो ठीक है, पता है ना 1 घंटे में कॉन्फ्रेंस हॉल में मिलना है, फ्रेश आकर हो जाओ। मुझे लगा अभी कुछ एक्शन होगा, चुम्मा चाटी, पर धीरज तो खुद्दू निकले। चलो, मैं थकी थी, सुबह से बस में बैठे बैठे उंगली करना चाहती थी। मेरा मन बिल्कुल नहीं था कॉन्फ्रेंस हॉल जाने का, फिर भी मैं अनमने मन से तैयार हुई। एक जीन्स और खूबसूरत सा टॉप पहना और रोशनी के बाहर निकलने का वेट करने लगी। कुछ देर में वो बाहर आई और मैं नहाने चली गई। बस में हुई घटनाओं के कारण नहाती हुई जाने कब मैं अपनी जूत में उंगली करने लगी, पता ही नहीं चला। दीपक और धीरज को मुझे जोतता हुआ सोच के मैं जोर जोर से अपना दाना हिला रही थी और मेरी जूत पानी छोड़ रही थी। एक हाथ से अपने चुच्चियाँ भेजे मैं अपने जूत को गिटार की तरह बजा रही थी। सोच रही थी कि काश दीपक और धीरज अभी बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर इसी फवारे के नीचे मुझे दम भर जोतें, एक आगे से मुंह में डाले, एक पीछे से जूत में। मेरी मटकती गांड को निचोड़ कर, मेरी टांगे हवा में करके दोनों अपने बीच सैंडविच बनाकर उठाएं और गांड और जूत दोनों फाड़ दें। मेरा हाथ थक गया, मैं परेशान होकर उंगली करना छोड़ दिया और नहा के कपड़े पहन लिए। बाहर आकर थोड़ा काजल, हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगा के मैं कॉन्फ्रेंस हॉल गई। तब तक 5 बज गए थे। शुरू के बोरिंग प्रेजेंटेशन से मैं बच गई, क्योंकि मैं सबसे बाद में आई थी तो दरवाज़ा खुलते ही सब मेरी ओर देखने लगे। मैंने कहा सॉरी, मैं खो गई थी कॉन्फ्रेंस हॉल ढोलते ढोलते। एक जवान सुडौल सहकर्मी ने मुझे अपनी सीट दे दी। झड़ ना पाने के कारण हर लड़के में मुझे लंडी दिखाई दे रहा था। मन तो कर रहा था कि कह दूं कि आप क्यों उठ रहे हो, मैं आपकी गोद में बैठ जाती हूँ, बस अपना जिप खोल के लौड़ा दे दीजिए। अपने कामुक दिमाग में आते विचारों को दरकिनार करते हुए मैंने सीट पकड़ी। कॉन्फ्रेंस में अब एक गेम शुरू हुई। एक खेल था गुब्बारे फोड़ने का। गुब्बारे कुल्हों पे, जिप के स्थान पर छाती पे थे, उन्हें बिना हाथ लगाए फोड़ना था। दो दो की जोड़ियां आकर कामुक एक्शन से गुब्बारे फोड़ने लगी। पर्ची में मेरा और किसी अनजान लड़के का नाम आया, अंकुर। मेरे बड़े बड़े चुच्चों पर लगे गुब्बारे मेरे आर्ट की फिगर को और भी बड़ा कर रहे थे। मेरी गांड पे भी गुब्बारे बंधे थे। अंकुर ने बड़ी कोशिश की पर वो फाड़ नहीं पाया। फिर धीरज और दीपक आए। एक ने आगे से छाती पे धक्का मारा और दीपक ने पीछे से गांड पर। ऐसे फोड़े जाते गुब्बारे, तुम लोग अभी बच्चे हो। एक पल के लिए उन दोनों के बीच सैंडविच बनने से मेरी कामवासना और भड़क गई। मैं तो चुदने के प्लान्स बनाने लगी। खेल खेल में दिन ढल गया। रात आ गई, डिनर का वक्त हो गया। सब लोग खाना खाकर परफॉर्मेंस का मजा ले रहे थे। एक स्टैंड अप कॉमेडी भी हुआ, लड़कियों का ग्रुप डांस हुआ, फैशन शो हुआ, लड़कों का ग्रुप सॉन्ग हुआ गिटार कीबोर्ड ड्रम के साथ। ये सभी परफॉर्म करने वाले लोग हमारे ऑफिस के ही थे। परफॉर्मेंस के बाद दारू की बोतलिंग शुरू हुई। रिजॉर्ट ने हमारे लिए बार का इंतजाम बगीचे में किया था। शराब के पैमाने छलकाने लगे। धीरज ने मुझे भी एक ग्लास लाकर दिया और बोले, आइस टी है। मैंने घूंट लिया तो जान गई कि वो लॉन्ग आइलैंड आइस टी थी, जिसे मैखानों में LLIT के नाम से जाना जाता है। लिट कोई आम कॉकटेल नहीं है, बल्कि एक ही ग्लास में सुरूर पैदा करने वाले कॉकटेल के रूप में जानी जाती है। इसमें एक बेहद लंबे ग्लास को बर्फ से आधा भरा जाता है और वोदका, रम, जिन, विस्की के साथ 30 ml के पैक डाले जाते हैं। फिर एक नींबू निचोड़ा जाता है, कोक डाली जाती है जब तक ग्लास पूरा न भर जाए। आमतौर पर एक कॉकटेल में केवल 30 ml की शराब होती है, पर लिट में 120 ml शराब होती है, जिससे बहुत जल्दी सुरूर चढ़ता है। खैर, मुझे शराब पिलाने का मकसद तो मुझे पता था, वो लोग मुझे नशे में धुत करके जोड़ना चाहते थे। मैं धीरे धीरे करके अपना जाम पी रही थी और सब शाम का लुफ्त उठा रही थी। दूसरी ओर धीरज और दीपक की नज़रें मुझ पर थी। वो नहीं जानते थे कि मैं कितनी बड़ी बेबड़ी हूँ। एक बोतल वोदका तो मैं मजाक मजाक में घटक जाती हूँ। जब मेरा पहला ग्लास ख़त्म हुआ तो दीपक आकर मुझे दूसरा ग्लास पकड़ा गए। मैं धीरज को भीड़ में ढूंढ रही थी, क्योंकि टल्ली होने का नाटक तो थ्रीसम में तब्दील करना था। धीरज तो लड़कियों के बीच कन्हैया की तरह नाच रहे थे। मैं टल्ली होने का नाटक करने लगी, इधर झूलती उधर झूलती, किसी को गले लगाती फिरती। तभी से मेरे दो जिम्मेदार सहकर्मी, जिन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की, उन्होंने मुझे सहारा दिया और दीपक के पास ले गए। सर, हम इसे कमरे में छोड़ आते हैं, लगता है ज़्यादा ही पी ली, दीपक ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा। तुम इसका कमरा जानते हो? ये तो बताएगी नहीं। नहीं सर, आप सही कह रहे हो, तो अब क्या करें, इसकी हालत तो बिगड़ रही है। एक काम करो, इसे मेरे कमरे में ले जाओ, धीरज से चाबी ले लो। दीपक ने मुझे जोड़ने के अपने अटल इरादे को पूरा करने के लिए अपना मजबूत दांव फेंका। अब वो भीड़ में धीरज को ढूंढने लगे। धीरज वहाँ नहीं था। अरे धीरज कहाँ चला गया? रुको, मैं उसे फ़ोन लगाता हूँ। एक काम करो, तब तक तुम दोनों इसे इन सबसे दूर बने उस बेंच पर बिठा दो। तभी मुझे सहारा दिए लड़कों में से एक बोला, सर इसे अंधेरे में क्यों बिठाएं? टुन है, कोई ऊंच नीच हो गई तो। दीपक झेप गए, बोले, मुझे तुम पर गर्व है, लड़कियों की सुरक्षा के बारे में सोचना बहुत अच्छा ख्याल है। लाओ, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी, तुम दोनों पार्टी इंजॉय करो। दीपक के बारे में बताऊं? एवरेज से हैं, थोड़ी तोन भी है, सर पे बाल भी कम है, पर काफ़ी लंबे चौड़े ऊंचे हैं, लगभग 6 feet, और सेहत में भी अच्छे हैं। गोरे और पंजाबी परिवार से हैं, खाता पीता, शरीर क्लीन शेव, उंगलियाँ ज़बरदस्त मोटी हैं। अब उनके पास मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो मुझे मेरे कमरे में ले आए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन्होंने वो खटखटाते हुए चिल्लाए, कौन है? मुझे चोद ना पाने की झल्लाहट उन पर साफ जाहिर थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो क्या देखती हूँ, धीरज ने खोला। अगर आप नहीं होते तो ये दरवाज़ा नहीं खुलता। धीरज ने हम दोनों को अंदर लिया। अंदर रोशनी नंगी थी। दीपक ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। अरे यार, कमरे की चाबी तुम ले आए। उन्होंने रोशनी की नग्नता को नज़रअंदाज किया, जैसे कि उनके सामने कितनी बार नंगी हो चुकी हो। रोशनी दीपक की नज़रअंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी टांगों के बीच में आकर उनकी पैंट की जिप खोलकर लौड़ा निकालने लगी। मुझे बेसुध देखकर धीरज बोले, अब आएगा मज़ा। रोशनी बोली, सर नशे में किसी को जोड़ना आप जानते हो ना क्या कहलाता है, होश आने दीजिए, रजामंदी से जो चाहे कीजिए। धीरज ने कहा, तू रंडी बताएगी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं? दीपक ने बड़े शांत स्वरों में कहा, धीरज रोशनी ठीक कह रही है। धीरज का लड़ा उदास होकर शिथिल पड़ गया। मुझे चोदने के सपने देखने वाले दीपक और धीरज सामने पड़ी मिठाई को छू भी नहीं पा रहे थे। मैंने नशे में ऐसे किसी का नाम लेते हुए कहा, रोहित आओ ना, किस करो मुझे। धीरज लपक कर मुझे चूमने लगा, उसे तो सिर्फ मौका चाहिए था। कपड़ों के ऊपर से चुच्चियाँ दबाने लगा। दीपक रोशनी का मुंह धड़ले से चोद रहा था। रोशनी के बाल उनकी मुट्ठी में थे और वो अपनी गांड हिलाकर रोशनी के मुंह में धक्के देते हुआ मोटा लौड़ा पेल रहा था। धीरज ने अपनी पैंट उतारी और मुझ पर कपड़ों के ऊपर से अपना लंड रगड़ने लगा। रोशनी ने मुझको देखते हुए दम भर जुदाई के बाद दीपक रोशनी में अपना माल गिरा के शांत हो गए और कपड़े पहनने लगे। रोशनी बाथरूम में चूत धोने और पेशाब करने चली गई। धीरज ने इस मौके की तरफ देखा और जींस उतारने लगे ताकि मुझे चोट सके। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि अब आई मेरी बारी। मैंने झूठे नशे में कहा, आओ न रोहित। पर दीपक शांत थे, रोशनी की कही बात उनके दिमाग में थी। वो धीरज के कान में बोले, रोशनी के सामने नहीं, वो कंप्लेन कर देगी। हम कोई गवाह होने का रिस्क नहीं ले सकते। अभी इसे मत जो, चिंता मत कर, कल का पूरा दिन रात है, दोबारा मौका मिलेगा। इतने में रोशनी भी बाथरूम से बाहर आ गई। दीपक ने मेरी ओर इशारा करते कहा, इसके कपड़े ठीक कर देना और कहना इतनी ना पिया करे। सर अपने कमरे में नहीं ले जाएंगे मुझे, रोशनी ने कामुक नजरों से कहा। शायद रोशनी अभी ठंडी नहीं हुई थी। धीरज सुनते रोशनी को चूमने लगे। दीपक ने कहा, धीरज तुम इंजॉय करो, मैं रूम में जा रहा हूँ, चाबी कहाँ है? दीपक ने धीरज की पैंट से चाबी निकाली और बोले, धीरज जो बोला है ध्यान रखना, जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाना, बोलकर दरवाजा बंद करके चले गए। यार मेरा तो नाटक ही बेकार हो गया। कुछ ही देर में धीरज रोशनी को कुतिया बनाकर चूत रहे थे। रोशनी आहें भर रही थी, किसी रंडी की तरह चूत रही थी। धीरज वासना में बोला, रोशनी बोल मेरी रंडी कौन? मैं रोशनी, मैं धीरज की रंडी, मैं दीपक और धीरज की रंडी, मैं मन में बोल रही थी और प्रैक्टिस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रोशनी ने कहा कि वो झड़ने वाली है। धीरज ने सुनकर धक्के तेज कर दिए और दोनों एक साथ झड़ने लगे। थोड़ी देर में मैं धीरज निढाल हो गया और रोशनी फिर बाथरूम में चली गई। धीरज भी पीछे पीछे बाथरूम में चल दिए। बाथरूम का दरवाज़ा खुला था। मेरा मन किया उसका हाथ झड़क कर खुद पकड़ लूँ धीरज का लौड़ा। मूद कर धीरज ने पानी से अपना लौड़ा धोया और बाहर आ गया। कपड़े पहने और बिना कुछ बोले चले गए। रोशनी तो दो बार तृप्त हो चुकी थी। ऑफिस गर्ल सेक्स के बाद निढाल होकर मेरे बाजू में सो गई। और दोस्तों मैं एक बार फिर से प्यासी रह गई।